ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज से 86 वर्षों पूर्व स्थापन हुआ। विद्यालय समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और शुरू से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, एक सत्य ईश्वरीय ज्ञान और दूसरा है सहज राजयोग। सत्य ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारी ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है, जिन सत्यों के आधार से हमारे जीवन चलते हैं और संसार का खेल चलता है। कल और परसों पूर्व दो सत्रों में दो मूल सनातन सत्यों के बारे में आपने समझ लिया है कि हम स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति हैं और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परम पिता परमात्मा है। अब आप सबको स्पष्ट है कि ना हम भौतिक हैं ना प्राकृतिक हैं। शरीर भौतिक है, पांच तत्वों से बना है, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अभौतिक हूँ, अलौकिक हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परमात्मा भी अभौतिक है, अलौकिक है, परम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो आज तीसरे सत्र में अब हम उस विधि के बारे में समझेंगे कि हमें अपने आप को उस परम पिता से कैसे जोड़ना है। योग शब्द का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। भक्ति में उस परमात्मा पिता से मन बुद्धि जोड़ने के लिए हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहे हैं, अनेक प्रकार के साधन सामग्री का आधार लेते रहे हैं, लेकिन जो राजयोग सीखने आप जा रहे हैं वो राजयोग कोई क्रिया नहीं है। जो आप सीख लें और घंटा आधा घंटा करते रहे, राजयोग कोई क्रिया नहीं है। राजयोग जीवन पद्धति है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। इसलिए यहां एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहां योगी जीवन बनाना है। इसलिए सबसे पहली बात कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, संपर्क, बातचीत कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो इसको कहेंगे कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा दूर बैठे हुए लोगों के संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते हैं, मिलन मनाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, बातचीत, संपर्क केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम संकल्प शक्ति के माध्यम से परमात्मा मिलन कर सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मैं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम हरेक अपने आप को देखें, हम अपने मन और बुद्धि कहां लगा कर बैठे। हमने अपने मन और बुद्धि को देह में, देह संबंधों में, दैहिक प्रवृत्तियों में, साधनों में, वैभव में, समाज में, संसार में, व्यसनों में, विकारों में, हमने अपने मन बुद्धि वहां आसक्त कर दिए हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए बाह्य क्रियाकांड करते हैं, कितने न साधनों का ढेर लगा देते हैं, परंतु रिजल्ट हम देखते हैं कि मन बुद्धि हमारे भटक ही रहे हैं। इसलिए राजयोग जो स्वयं परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं, इस योग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। अक्सर योग के नाम पर हम शारीरिक आसन, प्राणायाम की, व्यायाम की, देह दमन की क्रियाएं करते रहते हैं। हम भारतवासियों को भी स्पष्ट नहीं है कि यथार्थ योग किसको कहते हैं। अब आप देखिए, कई आसन, प्राणायाम, देह दमन की क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं, बहने, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। यहां आप देखिए, आराम से कुर्सी सोफा पर आप बैठे हैं, फिर भी एक घंटे के अंदर कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं या हम हिलते हैं, क्योंकि हमें हमारे शरीर भी अब ऐसे रोगी कमजोर बन गए हैं। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मार कर भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो एक आप गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। हमारी बुद्धि और ही देह में लग जाएगी। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है, मन से, मन और बुद्धि से हमें परमात्मा के प्रति अटेंटिव होकर बैठना है, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये आधा घंटा, घंटा, दो घंटा मैं प्रभु मिलन के लिए बैठा हूं, परमात्मा चिंतन के लिए बैठा हूं। तो लक्ष्य पूर्वक बैठना है। इसलिए केवल शरीर से आसन लगाकर बैठ गए, परंतु मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न नहीं हुए, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हुए, केवल शरीर से आसन लगाकर बैठ गए तो क्या फायदा है। इसलिए शरीर से रिलैक्स होकर बैठना है, मन और बुद्धि से अटेंटिव होकर बैठना है। कि ये आधा घंटा घंटा दो घंटा प्रभु चिंतन के लिए मैं बैठा हूं, अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। दुनियादारी की पचासों बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। हमें 2 घंटा प्रतिदिन निश्चित करना है। अमृत वेला 1 घंटा योग के लिए उत्तम समय है। अर्ली मॉर्निंग और संध्या के समय 1 घंटा हमें परमात्मा चिंतन में बैठना है, अपनी सहज स्थिति में बैठना है। तो राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग में हम क्या करें। भक्ति में तो मन परमात्मा में लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। तो सोचते हैं कि राजयोग में हमें क्या करना है। तो राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र जपना है, न मुख से कोई आवाज करना है, क्योंकि रटना जपना गाना बजाना आवाज करना ये सब औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, हम कोई उनके नाम की माला नहीं फेरते हैं, हम कोई उनका नाम जपते नहीं हैं, हम मुख से कुछ आवाज नहीं करते हैं। परमात्मा के लिए भी हमें ऐसी औपचारिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। चलो भक्ति में हमें परमात्मा का सही परिचय नहीं था तो हम प्रभु मिलन के लिए मेहनत करते रहे। जिसने जो सिखाया वो हम करते रहे, परंतु बरसों से भक्ति करने वालों की अब तक भी कंप्लेन है कि मन भटकता है, हमारा मन अभी भी एकाग्र नहीं होता है। इसलिए इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हो गए उन्होंने क्या कहा है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। इसलिए देखिए उन्होंने खुद क्या सजेस्ट किया है, हाथ का मण का छोड़ दे मन का फेर। हमें हाथ से माला के मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है, हमें मन रूपी मण के को फेरना है। क्योंकि हम जब से आत्मविस्मृत हुए, खुद को देह समझने लगे, हमारे मन बुद्धि भी बॉडी कॉन्शियस बन गए, बहिर्मुखी बन गए, हमारे मन और बुद्धि संसाराभिमुख बन गए हैं। इसलिए आप देखो हमें अक्सर कौन से विचार चलते रहते हैं, वो ही देह, परिवार, मित्र, संबंधी, नौकरी, धंधा, समाज, संसार की बातें ही हम सोचते रहते हैं। ये बताता है कि हम संसाराभिमुख बन गए हैं। अब हमें मनोस्थिति चेंज करनी है। अब हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना है। इसलिए प्रथम अभ्यास आप सभी को भी आत्मचिंतन का सिखाया गया। ये तो हमारा बाह्य स्वरूप है, वो प्रति जन्म बदलता रहता है। हमारा अविनाशी आंतरिक स्वरूप चैतन्य आत्म स्वरूप है। जितना हम आत्म स्मृति में रहेंगे, आत्म चिंतन का अभ्यास करते रहेंगे, हम स्व के प्रति केंद्रित होते जाएंगे। आपको परमात्मा चिंतन का अभ्यास सिखाया गया ताकि परमात्मा भी मुख हम बने। इसलिए हमें कोई माला फेरनी नहीं है, ना ही हमें कोई शब्द मंत्र रटना है। अक्सर लोग अपने गुरुओं से या शास्त्रों से कोई न कोई शब्द मंत्र लेते हैं और जपते रहते हैं, परंतु आप देखिए कई बार व्यक्ति मंत्र रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, परंतु उसके अर्थ को भी नहीं जानते हैं। घरों में जब धार्मिक प्रसंग होते हैं, मांगलिक प्रसंग होते हैं, कोई शुभ खुशी के प्रसंग होते हैं, हम धार्मिक क्रियाकांड करने के लिए ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को बुलाते हैं और वे मंत्रोच्चार करते रहते हैं। आप बताइए वहां बैठे हुए कितने लोग अर्थ समझते। ब्राह्मण मंत्र बोलता रहता है, श्लोक बोलता रहता है, वहां बैठे हुए कितने लोग अर्थ समझते हैं। जब अर्थ नहीं समझते हैं तो अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र जपना नहीं है। हमें मंत्र के अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। हमने धर्म को, योग को क्रियाओं तक सीमित बना दिया है, परंतु हमें उसके अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। इसलिए कोई ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति रटने की बात नहीं है। ये केवल बोलने की प्रथा नहीं है। हमें कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं है। हमें ओम शांति के अर्थ को समझना है और उस अनुसार आचरण करना है। ओम शांति का अर्थ अब आप समझ गए हैं कि ओम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे शांत आत्मा स्थिति में स्थित होना है। तो हमें ओम शांति बनना है, न कि सिर्फ रटना है, जपना है या लिखना है। सबसे उत्तम ये है, परमात्मा के सत्य परिचय को पाने के बाद परमात्मा प्यार मंत्र में मुग्ध होना, यही सरल विधि है। इस योग अभ्यास में हमें कुछ भी रटना, गाना, बजाना, कुछ भी आवाज नहीं करना है। हर आए दिन, वार, त्योहार, तिथि, नक्षत्रों पर हम घरों में, मंदिरों में और कितनी भजन संध्याओं का आयोजन करते हैं, माइक लगाकर रात रात कितने जोर जोर से गाते हैं, आवाज करते हैं। सत्य ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। अब आप सभी जान चुके हैं कि हम आत्माएं भी परम धाम की निवासी हैं, पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। ये कर्म क्षेत्र है, ये आवाज की दुनिया है, यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज करते हैं, लेकिन हम आत्माओं का असली घर और हमारे पिता परमात्मा का असली घर इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया है, जिसको हम शांति धाम परम धाम कहते हैं। तो मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज पहुंचता है। अंतर्मुखी मन, सोल कॉन्शियस मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए जब हम योग अभ्यास करने बैठे, हमें साइलेंस में बैठना है और मन ही मन हमें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करना है। तो राजयोग में कोई औपचारिक आर्टिफिशियल क्रियाएं नहीं है, कोई बाह्याचार क्रियाकांड नहीं है। तीसरी बात भाई बहने पूछते रहते हैं कि योग कैसे करना है। भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, दीवा जलाते हैं। राजयोग में हमें योग कैसे करना है? हम सामने क्या रखें? तो राजयोग में कोई भी मूर्ति, चित्र, फोटो का आधार नहीं है। भक्ति में अनुभव है, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं, दीवा जलाते हैं, फिर भी मन और बुद्धि दूसरी ही मूरतों में भटकता रहता है। आखिर ये आधार हम कब तक लेंगे? चलो, भक्ति में हम भगवान को मानते थे, परंतु यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। हरेक ने अपनी अपनी भावना, श्रद्धा, मत अनुसार अपने अपने इष्ट के मूर्ति चित्र फोटो रख दिए, परंतु अब हमें परमात्मा का सही परिचय मिल चुका है। अब आप सभी भी केवल भक्त आत्मा नहीं है, अब आप भी ज्ञानी आत्मा है। अपने आत्मा स्वरूप का परिचय भी प्राप्त कर लिया है, परमात्मा का भी सही परिचय कल आपको मिल गया है। अब आप खुद विवेक से सोचिए और बताइए कि हमें योग कैसे लगाना है, हमें योग किससे लगाना है, किससे लगाना है, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा की मूर्ति से, चित्र से या फोटो से योग नहीं लगाना। अब हमें डायरेक्ट मन और बुद्धि से उस परम चैतन्य परमात्मा से योग लगाना। हम अपने स्नेहियों को, प्रेमियों को, संबंधियों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो सामने तो याद आवे, ऐसे हैं क्या? नहीं, हम कहते हैं वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, मुझे उनके बाह्य फोटो की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। हम शरीरधारी मनुष्यात्माओं की तुलना में उनको निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हम कहते हैं। इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा को देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि वे भौतिक प्राकृतिक है ही नहीं। हम खुद आत्मा, हम खुद को भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा कोई देखने की हस्ती नहीं है। हमें मन और बुद्धि से समझना है, दिव्य बुद्धि से समझना है, स्मृति और चिंतन द्वारा अनुभूति करनी है। इसलिए साधनों के आधार पर नहीं, सत्य ज्ञान के आधार से और बाह्याचार की क्रिया विधि से नहीं, मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। यहां आप देख रहे हैं, चित्र लगे हुए हैं हमारे हरेक सेवा केंद्रों पर, हमारे म्यूजियम्स में भी, आर्ट गैलरी में भी चित्र मॉडल्स लगे हुए हैं। अब ये जो भी चित्र है, वो ज्ञान समझाने के लिए हैं, परिचय देने के लिए हैं। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। ये तो आप मानेंगे कि हम अपने घर में, अपने कमरों में जैसे चित्र लगाएंगे, उठते बैठते वही देखेंगे, वही सोचेंगे, वैसे ही बनेंगे। अगर हम क्रिकेटर के, एक्टर के, जानवरों के, मित्र संबंधियों के फोटो लगाएंगे तो उठते बैठते वही देखेंगे, वही सोचेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। क्यों नहीं हम सत्य ज्ञान के चित्र लगाएं, ताकि उठते बैठते सत्य ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहे, दूसरों को भी समझा सके, और वैसा ही हमारा शुद्ध चरित्र बनेगा। इसलिए ये परिचय देने के लिए हैं, ज्ञान समझाने के लिए हैं, हमें इनसे योग नहीं लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। हमारे विद्यालय के हर सेवा केंद्रों में सुबह शाम दोपहर जो निश्चित योग के क्लास के टाइमिंग्स है, उस समय हम अनुभवी भाई बहने योग अभ्यास कराने बैठते हैं। पर हमेशा कोई योग अभ्यास कराने नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हमारे हर योग रूम में, क्लासरूम में, हॉल में सर्वश्रेष्ठ योगी पिताश्री ब्रह्मा बाबा का चित्र ट्रांसलेट रखते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को याद करते हैं, ऐसे हमें भी उस पिता परमात्मा को याद करना है। इस प्रकार से राजयोग बिल्कुल सहज, इजी एंड नेचुरल योग है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई अननेचुरल बात नहीं है, हर कोई योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। जब परमात्मा का ये दिव्य संदेश हम भाई बहनों को देते हैं तो अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, परिवार वाले हैं, हमारे पर काफी जिम्मेवारियां हैं, नौकरी धंधा करना है, हम योगी नहीं बन सकते। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि योगी जीवन के बारे में हमारी समझ गलत है। अब तक भक्ति में जो योगी बने, तपस्वी बने, अधिकतर घर बार छोड़कर बने। इसलिए लोग सोचते हैं हम घर परिवार छोड़ नहीं सकते, हम कोई दूर जंगलों में एकांत में जा नहीं सकते, हम योगी नहीं बन सकते। परंतु नहीं। भाइयों और बहनों, देखिए राजयोग हमें क्या सिखाता है। राजयोग का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया को, घर परिवार को, जिम्मेवारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या छोड़ना है? देहभान को छोड़ना है। हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, देहाभिमान में आ गए हैं। हमें देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मन की चंचलता का मूल कारण है। हम देह भान में रहेंगे, हमें देह के मित्र संबंधी दुनिया के ही विचार आते रहेंगे। हम आत्मभिमानी बनेंगे तो हमारा नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। हमें स्थान नहीं बदलना है, हमें आत्मस्थिति बदलनी है। जैसे अपने घर में बेडरूम, सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम बनाए हैं, ऐसे कोई एक कोने में हम योग रूम बनाएं, योग का स्थान फिक्स करें, स्वच्छ स्थान पर सहज स्थिति में बैठकर साइलेंस में मन ही मन हमें प्रथम आत्मचिंतन, फिर परमात्मा चिंतन करना है, रियलाइज करना है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने मात्र से या सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते। हमें ड्रेस बदलने की बात नहीं है, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, आत्मस्थिति को बदलना है। कोई जटा बढ़ा देने से, माथा मुंडा देने से हम योगी नहीं हो जाते हैं। तो ड्रेस नहीं बदलना है, आंतरिक मन, बुद्धि, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बदलनी है। ये सफेद यूनिफॉर्म, सफेद ड्रेस इस विश्वविद्यालय का सिंपली यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है। ये इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम इस विद्यालय में, सेवा में समर्पित है, इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं। बाकी हमारे भाई बहने जो अपने घर परिवार में रहते हुए नियमित ज्ञान योग का अभ्यास करने आते हैं, तब सेवा में आते हैं, तब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। बाकी वे अपनी दुनियादारी में रंगीन कपड़े भी पहनते हैं। विद्यालय में ये सिखाते हैं कि हमें स्वच्छ, मर्यादा पूर्ण वस्त्र परिधान करने हैं। सफेद वस्त्र शांति, स्वच्छता, पवित्रता का सूचक है। योगी आत्माओं को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, इसलिए केवल बाह्य दृष्टि से यहां आकर बैठ जाने से या ड्रेस बदलने से कोई योगी नहीं हो जाता है। हमें आंतरिक आत्म परिवर्तन करना है, अपने विचारों में, भावनाओं में, मान्यताओं में परिवर्तन करना है। राजयोग का ध्येय बहुत श्रेष्ठ है। केवल पूजा पाठ, धूप दीप, आरती भजन गा लेने मात्र से हम धार्मिक नहीं बन जाते हैं। अक्सर हम नियम से सुबह शाम धूप दीप कर लेते हैं, आरती गा लेते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूं। परंतु अगर धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में नहीं है तो केवल बाह्य क्रियाएं करने मात्र से हम महान नहीं बन सकते। तो राजयोग का ध्येय केवल पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, कीर्तन, अर्चन करके खुश होने का नहीं है। राजयोग का लक्ष्य है हमें स्वयं पुजारी से पूज्य बनना है, हमें पतित से पावन बनना है, हमें स्वयं मनुष्य से देवता बनना है। हम ही देवता थे, भारत ही स्वर्ग था। हमने पवित्रता और दिव्य गुण गंवा दिए, हम साधारण मनुष्य बन गए। देहाभिमान में आकर विकारों, व्यसनों, बुराइयों के वशीभूत हो गए, हम ही नरक के असुर बन गए। संसार नरक बन गया, हम असुर बन गए। इसलिए परमात्मा आकर जो सहज राजयोग सिखाते हैं उनका लक्ष्य है हमें मनुष्य से देवता बनना है। अब परमात्मा को याद करने में जब हम पूछते हैं आप परमात्मा को याद करते हैं, अक्सर सब कहेंगे हम परमात्मा को याद करते हैं। परंतु देखिए, कोई परमात्मा को याद करने में जोर जोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, माइक लगाकर बहुत आवाज करते हैं, हे भगवान, ओ प्रभु, ओ गॉड कहकर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाह अकबर करके आवाज करते हैं। हमें आवाज नहीं करना है, बताया ना, मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। हमें साइलेंस में रहकर सच्चे ज्ञान और दिल के सच्चे प्यार से उस पिता को याद करना है। कई कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं परंतु अक्सर भगवान से मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो, धन दो। हम भगवान से अक्सर मांगते ही रहते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं हमें मांगना नहीं है, हमें मांगना नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, हम अधिकारी हैं अपने पिता परमात्मा से प्राप्त करने के लिए, हमें सिर्फ लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माता पिता अपने आप देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। बच्चा लायक है तो माँ बाप हर प्रकार से मदद करते हैं, खुद खा पी के मौज नहीं उड़ाते हैं, अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं। हमें लायक ईश्वरीय संतान बनना है। परमात्मा के लिए तो हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परंतु क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहला सकते हैं? हम ऐसे योग्य हैं? हमें योग्य बनना है। जब हम योग्य हैं, लायक ईश्वरीय संतान हैं, हमें परमात्मा की याद से ही प्राप्ति है, हमें उनकी स्मृति से ही समर्थि आती है, तो मांगना नहीं है। और तीसरा बताया है कि हम बड़े दीन हीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना, इतनी बुद्धि हमें देना। हम परमात्मा को विनती करते रहते हैं। राजयोग में हमें विनती भी नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्वगुण सर्व शक्तियों के सागर हैं, दाता है, वो निरंतर दे ही रहे हैं। हमें उनको विनती करने की आवश्यकता नहीं। जो दे ही रहा हो उनको फिर कहना देना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है और ही इरिटेट करना है। तो हमें पुकारना भी नहीं है, मांगना भी नहीं है, विनती भी नहीं करना। परमात्मा दे ही रहे हैं, वो सदा दाता है, और हरेक हम जानते हैं कि परमात्मा देता है तो कैसा देता है, जानते हैं ना सभी कि वो इतना थोड़ा थोड़ा नहीं देते हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं, अर्थात अनलिमिटेड बेहद देते हैं। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें प्राप्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? हमें स्वदर्शन करना है, स्वनिरीक्षण करना है कि हमें प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा भगवान से योग नहीं है, परमात्मा से हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे मूल बात, परमात्मा कौन है यही हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ भावना से श्रद्धा से अपनी मत और मान्यता अनुसार हरेक अपने अपने इष्ट को याद करते थे। हमें परमात्मा का सही परिचय ही नहीं था तो संपर्क में कैसे रहे। मुझे आपसे मिलना है तो आप कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, किनके रिलेशन के हैं, अगर यही परिचय मुझे नहीं है तो हम रास्ते में क्रॉस हो जाएंगे तो भी मिलन नहीं मना सकेंगे। परमात्मा का सही परिचय प्राप्त करने के बाद अब उनके मनन चिंतन में रहना, उसको योग कहते हैं। जैसे चित्र में बताया है कि आपके शहर में पावर हाउस है, बिजली घर है, आपको अपने घर में बिजली चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। हम ये स्थूल वायर भी जोड़ते हैं तो पहले ऊपर का रबर हटाकर अंदर के सूक्ष्म तारों को जोड़ते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा मिलन का जब अभ्यास करें हमें इस देह भान को भूल अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना है, परमात्मा चिंतन में रहना है, उसका नाम योग है। योग मीन्स रिलेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना, उसको योग कहते हैं। एक बच्चा अपने शारीरिक माता पिता को सहज ही याद करता है, उससे कोई क्रिया साधन नहीं लेने पड़ते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपने माँ बाप को जानता है, पहचानता है, उनसे संबंध है, उसे ऑटोमेटिक याद आती है। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारे आत्मिक पिता है। इस निश्चय करने के साथ ऑटोमेटिक उस पिता की याद हमें आने लगती है। हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सब देह के मित्र संबंधी है, ये एक जन्म के मित्र संबंधी है, ये शरीर छूटेगा, ये देह संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। हम नया शरीर लेंगे, हमें नए माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी मिलेंगे, तो ये एक जन्म के हैं, विनाशी संबंध है। हमें निश्चय हो जाए कि मुझ आत्मा के असली अविनाशी संबंध एक परम पिता परमात्मा से, वो ही मेरे असली माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। कोई शरीरधारी से सर्व संबंध नहीं हो सकते, निराकार से ही हो सकते। भगवान से संबंध जोड़ना, निभाना और मन वचन कर्म से प्रैक्टिकल फॉलो करना, उसका नाम है राजयोग। राजयोग हमें, हम भक्ति में मुख से रोज गाते रहते, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मुख से रोज गाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम अपने माता पिता बाप दादा के सामने बैठकर रोज गाते हैं क्या? तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो, हम गाते हैं? नहीं, हमें परख है। सैकड़ों नर नारियों में मेरे माता पिता कौन है, मुझे परख है, हमें परख है, हमें निश्चय है, यही मेरे माता पिता है, यही मेरे दादा दादी है। हमें परमात्मा के बारे में भी ये निश्चय हो, परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। वही मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। वही मेरे शिक्षक हैं, रक्षक हैं, साथी हैं, सारथी हैं। जब मैंने ये निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के सब कुछ है, तो मुझे ऑटोमेटिक हर समय, हर स्थान, हर बात में किसकी याद आएगी? परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि मैंने उनको सर्वस्व स्वीकार किया है। देखो, जब कोई ऐसी मुसीबत की बात आती है, शरीर के माँ बाप भी कहेंगे, बेटा उस भगवान को याद कर, वो पिताओं का पिता है, वो शिक्षकों का शिक्षक है, वो गुरुओं का गुरु सतगुरु है। इसलिए राजयोग की विधि है, परमात्मा की याद हमें सहज आती रहे, उसकी सहज विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। गायन सिर्फ नहीं, वर्णन नहीं, निश्चय, स्वीकार और मन वचन कर्म से इन संबंधों को फॉलो करना, उससे योग कहते हैं। ऑटोमेटिक हमें उसकी ही याद आती है। तो राजयोग की विधि है, परमात्मा को सिर्फ मानो नहीं, यथार्थ रूप से जानो, विवेक से पहचानो और मन वचन कर्म से फॉलो करो, स्वीकार करो, वो योग है। जीवन में हमें अनुभव है, संबंध बदलते हैं, स्मृति भी बदलती है, स्नेह भी बदलता है। देखो, बच्चा छोटा है, उस छोटे बच्चे को केवल माँ की ही याद आती है, क्योंकि अभी उनका माँ से संबंध है, इसलिए माँ की याद रहती है, माँ से ही प्यार रहता है। पर वही छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बाल दोस्तों से मित्रता होती है, युवा बनता है और मित्रों से मित्रता होती है, अब माँ की याद कम हो जाती है, अपने मित्रों की याद उनको ज्यादा आती है। अब शादी होती है पत्नी की याद आती है, बच्चा होता है अब दोनों का बुद्धि योग बच्चे के प्रति, जीवन में ये अनुभव है, संबंध बदलते हैं, याद भी बदलती है, प्यार भी बदलता है। तो अब तक खुद को देह समझकर, देह के मित्र संबंधों को याद करते रहे, अब हमें खुद को आत्मा निश्चय कर आत्मा के सर्व संबंधी एक परमात्मा को याद करना। तो परमात्मा के याद में रहना, प्यार में मगन हो जाना, उससे योग कहते हैं। तो राजयोग का अर्थ है मिलन, जोड़, मीन्स भगवान से कनेक्ट रहना, संबंध जोड़ना, उनकी याद में रहना, उनसे प्यार करना और दिल से उन पर कुर्बान होना, समर्पण में रहना, उसको योग कहते हैं। उसको योग कहते हैं। इसलिए देखिए जीवन में मित्र संबंधी भी अनेकानेक होते हैं, परंतु हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती, किसकी याद आती? हाँ, मित्र संबंधी तो अनेकानेक है, परंतु हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती? जिससे दिल का सच्चा प्यार है वो हमें बहुत याद आते हैं। परमात्मा की याद का आधार भी दिल का सच्चा प्यार है। जितना प्यार उतनी एकाग्रता नेचुरल आती जाएगी। अब आप हरेक अपने आप को देखिए, हम भगवान को याद करते हैं परंतु कैसे याद करते? कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। हमारा नियम है, हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हम सुबह शाम धूप दीप करते हैं, आरती गाते हैं, बस नियम से याद कर लेते हैं। मेरी सास करती थी इसलिए मैं भी करती हूं। न सही ज्ञान है, न दिल का सच्चा प्यार है, अब एक नियम से अपना काम पूरा कर लेते। कोई स्वार्थ से, मतलब से भगवान को याद कर। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए इसलिए हम उनको याद करते। अल्पकाल की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भक्ति करते हैं। कई भय से भगवान को याद करते हैं, मुझे कुछ हो न जाए, कहीं मर न जाऊं, कोई विघ्न न आ जाए, कोई मुसीबत न हो जाए, भय से भगवान को याद करते हैं। हम सच्चे ज्ञान से, दिल के सच्चे प्यार से कहां याद करते हैं? इसलिए अब हमें ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक खुद महत्व समझकर प्यार से उस पिता को याद करना है। तो ये है राजयोग, सर्व योगों का राजा, सर्वश्रेष्ठ योग, जिस योग अभ्यास से, जिस योग पद्धति से हम अपने आप को पवित्र महान बना सकते हैं, मन बुद्धि संस्कार और इन स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा अधिकारी बना सकते हैं। राजयोग सहज योग है, पूरी विधि आपको बताई, कोई औपचारिकता नहीं है, कोई बाह्याचार नहीं है, बिल्कुल सहज, इजी एंड नेचुरल है। ये कर्म योग है, कर्म करते भी हम अपने मन बुद्धि का अटेंशन परमात्मा के प्रति रख सकते हैं। हमें कोई कर्म संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जितना ज्ञानी योगी बनते हैं, हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिल का जिगरी प्यार परमात्मा से करना, इसलिए ये प्रेम योग, स्नेह योग कहा जाता है। लास्ट बात, राजयोग की विधि इतनी सहज है, योग अभ्यास के समय आंख बंद करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं। लोगों की मान्यता गलत है कि आंखें खुली होगी हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए लोग परमात्मा को याद करने बैठते हैं तब आंख बंद करके बैठते हैं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? भटकता है ना, क्योंकि हमने बाह्य स्थूल आंखें बंद कर दी, पर मन की आंख तो घूम रही है, तो एकाग्रता कैसे आएंगी? क्यों नहीं हम बाह्य आंखें नेचुरल खुली रहने दें, मन की आंख परमात्मा के प्रति फोकस करें और उनके मनन चिंतन प्यार में मग्न रहे, तो आंखें खुली होगी, कितने भी सामने बैठे होंगे तो भी मन नहीं भटकेगा। आखिर हम प्रवृत्ति में हैं, आपको घर परिवार नौकरी धंधा संभालना है, यहाँ हम समर्पित होने के बाद भी अलग अलग सेवा विभाग संभालते हैं, आंख बंद कितना समय कर सकेंगे? क्यों नहीं हम अभ्यास ही ऐसा करें, आंखें नेचुरल खुली हो, मन और बुद्धि की आंख परमात्मा के प्रति फोकस हो। तो ये है राजयोग की विधि। जैसे जैसे आप ईश्वरीय ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अपने आप चिंतन बदलेगा, अब तक हमने दुनिया की बातें बुद्धि में भरी, तो जो इनपुट किया वो ही आउटपुट आएगा ना। तो चिंतन में तेरी मेरी दुनिया भर की बातें आती रहती हैं। जैसे जैसे सत्य ज्ञान से बुद्धि को भरपूर करेंगे, वो सत्य ज्ञान की बातें चिंतन में आती रहेगी। और जितना निश्चय और प्यार परमात्मा से होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। तो आज हम विधि पूर्वक राजयोग का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित अलर्ट होके बैठ जाएं, अपना डायरी, फाइल, पर्स, हैंडबैग, मोबाइल, जो भी चीजें हैं समेट कर एक तरफ रख दें। अपने हाथ में गोद में लेके न बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठे, टच करके न बैठे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, परंतु मन और बुद्धि से हम अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। हम जानते हैं पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। हम मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे। इस प्रकार का आपका ये नया अभ्यास है, इसलिए हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे चिंतन करना है मैं गाइड करूंगी। कमेंट्री के रूप में विचार आपको दूंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है। जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है, अर्थ समझना है, उस अनुभव में स्थित होना है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखें, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में देखें और उस ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करें। अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं। इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों से भी आगे, परम धाम में पहुंच जाइए। जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी हूं, मेरे पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी, मेरे अति प्रिय परम ज्योति बिंदु प्यारे शिव पिता, आपके सत्य ज्ञान को पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मेरे मन का अज्ञान अंधकार समाप्त हुआ है। मैं जानती हूँ मैं स्वयं कौन हूँ और मेरे प्यारे पिता आप कौन है। मेरे प्यारे शिव पिता, आप संपूर्ण सत्य ज्ञान के सागर हैं और दाता हैं। आप सर्व दिव्य गुण सर्व अलौकिक शक्तियों के सागर अखुट भंडार है। आप शांति के सागर शांति दाता है। आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। मैं स्वयं शांत रहूंगी और शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। प्यार के सागर मेरे प्यारे शिव बाबा, आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सबके साथ प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी शुद्ध बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे ये निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी अविनाशी संतान हूँ, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। ओ